पाठ 8।
बाइबल को परमेश्वर का वचन कहा जाता है क्योंकि यह परमेश्वर का यह समझाने का तरीका है कि वो कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारा अस्तित्व क्यों है। यह जटिल है। यदि हम अपनी बाइबल को किसी अनियमित स्थान पर खोलें और पढ़ना शुरू करें तो हम संभवतः भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल वास्तव में लगभग 2000 वर्षों की अवधि में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई 66 अलग अलग पुस्तकें हैं। बाइबल की पुस्तकें परमेश्वर से प्रेरित थीं। इसके अलावा परमेश्वर ने पुष्टि की कि पुस्तकों की सामग्री सत्य है और वे उन्हीं की ओर से हैं। कई पुस्तकें बहुत विशिष्ट लोगों के समूहों के लिए थीं। आरंभिक चर्च ने इन पुस्तकों को एकत्र किया और एक एकल खंड में व्यवस्थित किया जिसे अब हम बाइबल कहते हैं। एकत्रित रूप में वे दिखाते हैं कि पूरे इतिहास में परमेश्वर ने मनुष्य के साथ कैसे बातचीत की। बाइबल की पुस्तकें विभिन्न शैलियों में लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए भजनों की पुस्तक गीतों और प्रार्थनाओं की पुस्तक है। यह ऐसे रूपकों से भरा हुआ है जिनका हमेशा शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि यूहन्ना का सुसमाचार यीशु के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक कार्य है। पत्रियां इफिसियों की तरह पत्रियां प्रारंभिक चर्च लीडरों यानी अगुओं द्वारा विशिष्ट लोगों के समूहों को लिखे गए पत्र थे। भविष्यवाणी की किताबें हैं जैसे यशायाह और प्रकाशित वाक्य की किताब। एक लंबी जटिल भविष्यवाणी जो मूल रूप से प्रारंभिक ईसाई चर्च के लिए लिखी गई थी। और भी बहुत कुछ है लेकिन आप बात को समझ गए। बाइबल भी दो नियमों में विभाजित है। पुराना नियम यीशु के जन्म से पहले लिखी गई किताबों से बना है और नया नियम में यीशु के जन्म के बाद लिखी गई किताबें हैं। बाइबल की पहली 5 पुस्तकें यानी पेंटाटूक इसराइलियों द्वारा और उनके लिए दुनिया की शुरुआत, उनसे किए गए परमेश्वर के वादों और कैसे उन्होंने उन्हें एक राष्ट्र के रूप में बनाया, यह समझाने के लिए लिखी गई थीं। संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर और लोगों के बीच अलग अलग समझौते हैं। इन्हें वाचाएं कहा जाता है। आज हम यीशु की वाचा के अधीन रहते हैं। इसका मतलब है कि हमें लेव्य व्यवस्था या व्यवस्था विवरण जैसी किताबों में विस्तृत औपचारिक कानूनों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है जो यहूदी लोगों के साथ परमेश्वर की पुरानी वाचाओं में से एक के तहत थे। ये औपचारिक यानी आनुष्ठानिक कानून यीशु की ओर इशारा करने वाले प्रतीकों के रूप में काम करते थे। इसलिए औपचारिक कानून उनके जीवन और मृत्यु से पूरे हुए। यदि आपका सिर चकरा रहा है तो एक क्षण रुकें और सांस लें और फिर हिम्मत बांधिए क्योंकि आपको अभी यह सब समझने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको पढ़ना ही है, एक कर्तव्य की तरह है। यह कुछ ऐसा है जो आपको पढ़ने को मिलता है। इसका उद्देश्य आनंददायक होना है। पढ़ना, अध्ययन करना और जीवन भर जीना, यह एक खजाना है जो आपके दिल और दिमाग को बदल देगा। बाइबल के कुछ भाग दूसरों की तुलना में समझने में आसान हैं। हमारा सुझाव है कि आप उत्पत्ति की पुस्तक यानी बाइबल की पहली पुस्तक और कम से कम 4 सुसमाचारों यानी मत्ती, मरकुस, लूका या यूहन्ना में से एक को पढ़ने से शुरुआत करें। वहां से नए नियम में प्रेरितों की पुस्तक और पत्रियों के साथ साथ निर्गमन की पुस्तक को पढ़ना उचित हो सकता है। रोमियो और इब्रानियों, ये 2 पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ना कठिन है। फिर भी वे यीशु की नई वाचा और पुराने नियम की पुरानी वाचाओं के बीच अंतर को समझने में मदद करती हैं। बाइबल में कई दिलचस्प कहानियां हैं। यहूदी लोगों की विस्तृत वंशावली और जटिल कानूनों के अनुभाग भी हैं। हालांकि आप निश्चिंत हो सकते हैं कि बाइबल के हर अंश का एक अच्छा उद्देश्य है और यह अध्ययन करने लायक है क्योंकि बाइबल हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं, वो कौन है और कैसे जीना है। ये हमें बुराई से बचाता है। इसलिए आपको ऐसी किसी भी चीज से सावधान रहना चाहिए जो आपको लगातार बाइबल पढ़ने से रोकती है, आपका फोन, वीडियो गेम इत्यादि। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आपको एक लेनी चाहिए। एक साल में पूरी बाइबल पढ़ने की योजनाएं उपलब्ध हैं। और ये मददगार हैं, क्योंकि ये आपको हर दिन छोटे छोटे हिस्से पढ़ने को देती हैं। यदि आप बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ें, लेकिन परमेश्वर के वचन का स्वाद चखना सीखने पर ध्यान देना बेहतर है। ये प्रोत्साहन और ज्ञान का एक निरंतर स्रोत है, और ईसाई जीवन जीने की आपकी क्षमता सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी है कि आप बाइबल को अपने दिल और दिमाग से नियमित रूप से कितना संलग्न करते हैं। बाइबल को समझने में मदद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनसे कहें कि वो उनके आदेशों को अपने दैनिक जीवन में लागू करने में आपकी मदद करे। इसे पढ़ने और सुनने में लापरवाही न करें, अपने आप को इसे भूलने न दें। हो सकता है कि आप ये न सोचें कि आप एक पाठक हैं, लेकिन बाइबल शीघ्र ही आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति बन जाएगी, क्योंकि यह आपके लिए परमेश्वर के वचन है। गहराई में देखें, एक बाइबल लें और एक वर्ष में बाइबल पढ़ें। योजना खोजें और उस पढ़ने की योजना का पालन करना शुरू करें।